ओम शांति। परम शिक्षक बाबा ने आप हम सभी को इस ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन में चार सब्जेक्ट दिए हैं और उसमें से अंतिम सब्जेक्ट कौन सा है? सेवा। क्योंकि सेवा से ही हमारा कल्प कल्प का भाग्य बनता है। सेवा से ही हमारे जीवन में अनेक प्रकार की विशेषताएं आती हैं, योग्यताएं आती हैं, अनेक प्रकार की कलाएं हमारे जीवन में आती हैं, जो कि मानव जीवन में उनका होना अति आवश्यक है। और सेवा के सब्जेक्ट में भी बाबा ने विशेषकर कर्मणा सेवा, वाचा सेवा और तीसरे मनसा सेवा के लिए कहा है। और बाबा ने भविष्यवाणी की है कि भविष्य में ऐसा समय आएगा जो आप वाचा सेवा नहीं कर सकेंगे, उस समय आपके पास केवल एक ही ऑप्शन होगा, मनसा सेवा का या सकास द्वारा सेवा करने का। तो अभी जो हमारी सीरीज चल रही है आर्ट ऑफ सकास, सकास देने की सेवा, उसमें आज विशेष टॉपिक है, विषय है कि सकास देने की विधि और दूसरा बिंदु है सकास देने से फायदे क्या स्वयं को भी और अन्य आत्माओं को भी, और तीसरा बिंदु है उसका प्रूफ क्या है। आपने जो सकास दी, चाहे स्वयं के लिए, चाहे अपने संबंध संपर्क वालों के लिए या संसार की आत्माओं के लिए, उसका प्रूफ क्या है, उसका आउटपुट क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि संसार में हर एक व्यक्ति जीवन में सफलता चाहता है। कोई भी कार्य करता है तो उसका लक्ष्य रहता है कि उसमें कम समय लगे, मेहनत कम हो, एनर्जी कम लगे और सफलता अधिक से अधिक मिले। लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उसकी विधि यथार्थ हो, क्योंकि जब तक विधि यथार्थ नहीं होगी तब तक सिद्धि नहीं मिलेगी। विधि और सिद्धि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। यदि सिद्धि प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब है कि विधि सही है, और विधि सही नहीं होगी तो सिद्धि नहीं मिलेगी। तो इस ब्राह्मण जीवन में जो बाबा ने हमें सकास देने की सेवा के लिए कहा है, उसकी विधि भी यथार्थ होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि जब हम को संसार की आत्माओं को सकास देना है या किसी को भी सकास देना है तो पहले स्वयं को भरपूर करना पड़ेगा, स्वयं को संपन्न बनाना पड़ेगा, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही। जिस समय हमें सकास देनी है उस समय यदि हम अपने आप को भरपूर नहीं बनाते हैं तो हमारी सकास उन तक नहीं पहुंचेगी। तो सबसे पहली बात है कि हमें स्वयं को संपन्न बनाना है, भरपूर बनाना है जिन चीजों की हमें सकास देनी है, चाहे कोई गुण है, कोई शक्ति है। संसार में आत्माओं की डिमांड क्या है? शांति चाहिए उनको, सच्चा सुख चाहिए, शक्ति चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए, सुख चाहिए, खुशी चाहिए, सहयोग चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि हमें उससे पहले अपने आप को भरपूर करना है, विशेषकर उस समय जिस समय हमें सकास देनी है, उस समय हमें अपना वह स्वरूप को इमर्ज करना है कि हम उस चीज से भरपूर हैं। हमें संसार को शांति की सकास देनी है तो हमें स्वयं को शांति से भरपूर अनुभव करना है। और फिर बाबा ने अनेक प्रकार की जो विधियां बताई हुई हैं उनको हम यूज करते हुए संसार की आत्माओं को या स्वयं के लिए या सेवाओं के लिए हम सकास का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। तो उसमें सबसे पहले विधि है कि बाबा ने कहा कि आपका जो संगम योगी ब्राह्मण स्वरूप है उसका जो अंतिम स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप या बाबा कहते हैं अंतावाहक स्वरूप, उसके माध्यम से सकास देना। तो ये पहली विधि है कि संगम योगी ब्राह्मणों का जो अंतिम फरिश्ता स्वरूप है या फिर अंतर्वाहक स्वरूप, उसके माध्यम से सकाश देना। संसार में भी इस स्वरूप की लोग चर्चा करते हैं कि नुमा शाम के समय विशेषकर देवताएं या फरिश्ते चक्कर लगाते हैं। तो जो देवताएं या फरिश्ते चक्कर लगाते हैं वो कौन है? हमें, अर्थात हम सभी ने पिछले कल्प में ये सेवा की है, किया है ना, इसीलिए हमारा वो यादगार अभी भी कायम है, चल रहा है। तो सबसे पहली विधि है कि हम अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप द्वारा या अंतर्वाहक शरीर द्वारा संसार की परिक्रमा करें, संसार में चक्र लगाएं और संसार की आत्माओं की जो डिमांड है, जो उनकी चाहना है, जो हमारे से बहते हैं, उसकी उनको सकाश दें। तो उसमें भी पहली बात वही आती है कि पहले हमें अपने आप को उस स्वरूप से भरपूर करना है। तो फरिश्ते अर्थात कैसे फरिश्ते बनकर हमको चक्कर लगाना है? कौन सा फरिश्ता? शांति का फरिश्ता। यदि संसार की आत्माओं को हमें शांति की सकाश देनी है तो हमें क्या बनना पड़ेगा? शांति का फरिश्ता। प्रेम की सकाश देनी है तो प्रेम का फरिश्ता। सुख की सकाश देनी है तो सुख का फरिश्ता। तो हमें अपने आप को उस स्वरूप में स्थित करके फिर संसार का चक्कर लगाना है, परिक्रमा लगानी है। और परिक्रमा लगाते समय हमें वो वाइब्रेशंस, वो प्रकंपन फैलाने हैं, होलसेल में भी और विशेषकर किसी एक विशेष आत्मा के लिए या किसी एक विशेष ग्रुप के लिए। दूसरी विधि है, बाबा ने कहा कि जो हमारे ब्रह्मा बाबा वर्तमान समय सूक्ष्म वतन में संपूर्ण स्वरूप में विराजमान है, और हम सभी बच्चों का भी आह्वान करते हैं कि बच्चे आप व्यक्त वतन में आओ और मेरे साथ बैठ करके क्या सेवा करो? सकाश देने की सेवा करो। जैसे ब्रह्मा बाबा वतन में बैठ करके संसार की आत्माओं को सकाश देने की सेवा कर रहे हैं ना, सभी को यह अनुभव तो होता है, बेशक कभी कभी अनुभव होता होगा, लेकिन बाबा से हमें सकाश मिल रही, बाबा से हमें वो किरणें मिल रही हैं, वो हम सभी को अनुभव तो होता है। तो बाबा कहते आप बच्चे भी मेरे साथ अव्यक्त वतन में आकर के मेरे साथ बैठ करके संसार की आत्माओं को सकाश दो। तो दूसरी विधि ये है कि अव्यक्त वतन में अव्यक्त बाबा के साथ बैठ करके हम संसार की आत्माओं को सकाश दें। तो जैसे ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन से सारे संसार की आत्माओं को इमर्ज करते हैं, चाहे सृष्टि ग्लोब के रूप में, चाहे किसी एक विशेष आत्मा को या अन्य आत्माओं को, तो उसी प्रकार से हमें भी ब्रह्मा बाप समान उन संसार की आत्माओं को सकाश देनी है, दृष्टि के द्वारा, मस्तक के द्वारा अनुभव करना है कि मुझ आत्मा से शांति की, प्रेम की, शक्ति की किरणें निकल रही हैं, मेरे मस्तक से वो किरणें निकल रही हैं और संसार में वो जा रहे हैं, सारे सृष्टि ग्लोब पर वो किरणें पड़ रही हैं, और संसार में जो भी आत्माएं जिनकी वो चाहना है, जो अशांति में भटक रहे हैं, जो अज्ञानता में डूबे हुए हैं, जो सुख की तलाश कर रहे हैं, उन पर वो मेरी किरणें पड़ रही हैं और वो आत्माएं उस सुख से भरपूर होती जा रही हैं। तो ये दूसरी विधि है। तीसरी विधि है ज्ञान सूर्य बाप के साथ मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर के संसार को सकाश देना। शिव बाबा कहाँ बैठे हुए हैं? ज्ञान सूर्य कहाँ रहते हैं? परम धाम में। तो हम सभी को भी कहाँ जाना है? परम धाम में। तो बाबा ने कहा कि जैसे मैं परम धाम में होते हुए सारे संसार की आत्माओं को शक्ति देता हूँ, तो उसी प्रकार से आपको भी मेरे पास बैठ करके संसार की आत्माओं को सकाश देना है, शक्ति देनी है। तो हमें उस चीज को विजुलाइज करना है कि परम धाम में शिव बाबा जो ज्ञान सूर्य है वो चमक रहा है, उससे किरणें निकल रही हैं सर्व शक्तियों की, गुणों की। तो उसके नीचे हम बैठे हुए हैं, शिव बाबा से किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे निकल करके सारे संसार में फैल रही हैं। संसार में जितनी भी आत्माएं वर्तमान समय दुनिया में लगभग कितनी आत्माएं होंगी? 700 करोड़ से ऊपर, सबको याद है। तो दुनिया में जितने भी आत्माएं हैं उन सभी आत्माओं तक मुझ से निकलने वाली किरण पहुंच रही है। तो एक एक आत्मा को एक एक किरण पहुंच रही है, किससे? मुझ मास्टर ज्ञान सूर्य से, सर्वशक्तिवान से। तो तीसरी विधि ये है कि ज्ञान सूर्य बाप के साथ सबसे ऊंचे स्थान पर परम धाम में बैठ करके मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर के संसार की आत्माओं को सकाश देना, और उस सकाश देने में हम वैरायटी रूप से उसको प्रयोग कर सकते हैं कि हम उसमें एक एक गुण या एक एक शक्ति के सकाश दे सकते हैं या फिर सर्व शक्तियों को एक साथ दे सकते हैं, सर्व गुणों को एक साथ भी सकाश दे सकते हैं। उसमें फिर क्या होगा कि रंग बिरंगे किरणें निकल करके संसार की आत्माओं पर पड़ रही हैं, एक साथ सर्व शक्तियों की किरणें पड़ रही हैं, एक साथ सर्व गुणों की किरणें पड़ रही हैं। तो ये हमें स्वयं को ऐसा विजुलाइज करना है। फिर अगली विधि है जो बाबा ने बताई है कि बाबा कहते हैं ये सृष्टि जो है वो एक कल्प वृक्ष है, तो इस सारे कल्प वृक्ष को आपको इसकी पालना करनी है सकाश के माध्यम से। तो इसमें सबसे पहली बात है कि हमें इस कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ करके इस सारे वृक्ष को सकाश देनी, इसकी पालना करनी है, क्योंकि वर्तमान समय इस कल्प वृक्ष के जो भी शाखाएं उपशाखाएं हैं, टाल टालियां हैं, पत्ते हैं, वो सभी कैसे हो चुके हैं? मुरझाए हुए हैं, कमजोर हैं, सूख रहे हैं। उनमें सच्ची शांति, सच्ची खुशी, सच्चा प्यार, सच्चा सुख का अभाव है, और वो चाहते हैं कि कहीं से हमको सुख शांति की बरसात हो, सुख शांति कहीं से हमको कुछ एनर्जी मिले, खुराक मिले। तो वो खुराक कहां से मिलेगी? हमसे। क्यों? हमने लेना सीख लिया, क्योंकि हम बीज रूप बाप से कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। जो बाप सागर है, हर चीज का सागर है, तो वो सागर से हम कनेक्ट हैं। तो हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम संसार की अन्य आत्माओं को भी वो सब प्राप्तियां कराएं। तो इसकी विधि है कि हम कल्प वृक्ष के जड़ों में बैठ करके संसार की आत्माओं को सकाश दें और अनुभव करें कि मुझसे निकलने वाली किरणें, वाइब्रेशंस, प्रकंपन संसार की उन सभी आत्माओं को पहुंच रही है, एक एक पत्ते को वो पहुंच रही है। तो जो पत्ते अभी तक सूखे थे, जो पत्ते अभी तक उदास थे, निराश थे, हताश थे, कमजोर थे, भयभीत थे, उनमें क्या आ रहा है अभी? उमंग, उत्साह, खुशी, उनमें सुख की अनुभूति हो रही है, उनको उनमें हरियाली आ रही है, क्योंकि वृक्ष को जब पानी मिलता तो क्या होता है, उनमें हरियाली आती है ना पत्तों में। तो जिस कल वृक्ष जो वृक्ष के जो पत्ते हैं उनमें भी हरियाली आ रही है। किस चीज की हरियाली? खुशहाली की हरियाली, उमंग उत्साह की हरियाली। तो एक ये विधि है, और दूसरी विधि है कि इसी कल्प वृक्ष को हमें उल्टा करके ऊपर बैठ करके इसको सकाश देनी है ना। तो बाबा ने एक ये विधि बताई हुई है कि इस कल्प वृक्ष को इमर्ज करो, कल्प वृक्ष ये उल्टा है और हम इसके ऊपर बैठे हुए हैं, और ऊपर शिव बाबा से, सागर से हमारे पास सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की किरणें आ रही है और हमारे से निकल करके सारे वृक्ष को पहुंच रही है। ये बहुत सहज होगा क्योंकि इसमें सब कुछ नीचे जा रहा है। तो एक ये विधि है कि कल्प वृक्ष को उल्टा, और उसमें हम जड़ों में बैठे हुए हैं और सारे कल्प वृक्ष को वो किरणें जा रही हैं हमारे से निकल करके संसार की आत्माओं को, वो सब प्राप्ति हो रही है, अर्थात उनको हमारी, उनको सब वो पालना मिल रही है। संसार को वर्तमान समय ये पालना चाहिए, ये भोजन चाहिए शक्तियों की, गुणों की, इसके संसार में अभाव है। और इसके लिए बाबा ने एक विधि बताई हुई है कि जैसे ब्रह्मा बाबा कल्प वृक्ष के ऊपर खड़े हुए हैं, इसी प्रकार से हमें भी इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़े होकर के संसार को सकाश देनी है। तो ये भी एक बहुत अच्छी विधि है कि हम इस संसार के जो सृष्टि का कल्प वृक्ष है उस पर हम ऊपर खड़े हुए हैं और वहां से हम सारे कल्प वृक्ष को सकाश दे रहे हैं। सकाश किस रूप में? जैसे कि वर्षा के रूप में मुंह से निकलने वाले किरणें, जैसे कि फाउंटेन, एक वर्षा, एक फाउंटेन जैसा होता है ना, सब पर किरणें पड़ती हैं, तो इसी प्रकार से मुझ से निकलने वाली किरणें सारे वृक्ष पर पड़ रही हैं। उसको जबरदस्ती देना है। तो एक विधि ये है, और दूसरी एक विधि ये है कि बाबा ने कहा कि आप लाइट हाउस माइट हाउस हो। ये संसार में जो लाइट हाउस होता है वो क्या करता है, भटकी हुई आत्माओं को रास्ता दिखाता है। विशेषकर जो सागर किनारे लाइट हाउस बने होते हैं तो सागर में जो कोहरा होता है उसमें विशेष उनको मालूम नहीं पड़ता कि हमको जाना कहाँ, हमारा लक्ष्य कहाँ है, क्या है, वो दिशा भटक जाते हैं। तो संसार की आत्माएं वर्तमान समय दिशा भटकी हुई है, उनको ये ज्ञात नहीं है कि हमें सुख शांति कहाँ से मिल सकती है, सुख शांति का वास्तविक स्रोत कौन है, कि संसार में बहुत वैरायटी है, बहुत सारे वो दुकान लगी हुई है जो कहते हैं कि हमारे पास सुख शांति है, लेकिन वहां कहीं भी सुख शांति उनको वो नहीं मिल रही है। सिर्फ एक शो है, दिखावा है, एक आकर्षण है, लेकिन सच्ची सुख शांति कहां से मिलेगी, भगवान के दर से, भगवान के घर से। तो बाबा के संसार में जो आत्माएं जो भटक रही हैं सच्ची सुख शांति की प्यास को लेकर के, उन आत्माओं को ये राह दिखाने के लिए, उनको सकाश देने के लिए आपको लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। तो हम लाइट हाउस माइट हाउस बनेंगे तो हमारे से जो निकलने वाली किरणें, जो निकलने वाले प्रकंपन है, जो रेजेज हैं, उन आत्माओं पर पड़ेंगी और उन आत्माओं को एक आकर्षण होगा कि ये प्रकंपन कहाँ से आ रहे हैं, और फिर वो उस आकर्षण से खींच करके आएंगे। कहाँ खींच करके आएंगे, हमारे पास, और फिर बाद में जो स्रोत है उसके पास। तो एक विधि ये है कि बाबा ने कहा कि आप लाइट हाउस माइट हाउस हो, तो संसार की आत्माओं को आपको लाइट हाउस माइट हाउस बन करके सकाश देनी है। लाइट हाउस प्रकाश कब देता है, जब उसमें खुद प्रकाश होता है। तो हमें पहले अपने आप को सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से भरपूर करना है, उसके बाद हमें अपने आप से वो प्रकंपन, वो प्रकाश, वो किरण फैलानी है जो संसार की आत्माओं तक पहुंचे और वो आत्माएं हमारी तरफ आकर्षित हों और आकर के भगवान के पास पहुंचे और भगवान से वर्षा लें, सुख शांति की प्राप्ति करें। और एक दूसरी विधि है कि जैसे साकार बाबा थे और साकार बाबा का यादगार स्थल जो बना हुआ है उसको क्या कहते हैं, शांति स्तंभ, उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, टावर ऑफ पीस। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को भी साकार बाप समान टावर बनना है। किस किस चीज का टावर बनना है, सुख का टावर, शांति का टावर, प्रेम का टावर, आनंद का टावर, शक्तियों का और पवित्रता का, ज्ञान का टावर। ये संसार में जैसे मोबाइल के टावर होते हैं ना, तो जहां तक उनकी रेंज होती है वहां तक उससे वो, तो उनसे उनकी किरणें फैलती हैं और उसके रेंज में जो भी आता है उसको वो कनेक्ट हो जाता है, और फिर उससे उसके माध्यम से उनको जो रिसर्च करना होता है उसको वो रिसर्च कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमें भी टावर बनना है। तो जैसे बाबा टावर थे, साकार बाबा के समय में बाबा के पास जो भी आते थे उनको अनुभव होता था कि बाबा एक प्राप्तियों से भरपूर हैं, शांति से संपन्न है। शांति आत्माएं आती थी अशांत होकर के, लेकिन बाबा के पास आते ही वो शांत हो जाती थी, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ उनसे डिमांड किए। तो उसी प्रकार से हमें भी क्या बनना पड़ेगा, टावर, हर चीज का टावर। तो जितना जितना हम स्वयं टावर बनते जाएंगे तो हमारे से निकलने वाले प्रकंपन है उन आत्माओं के पास पहुंचेंगे और वो आत्माएं आकर्षित होंगे या उनको हमारे से सकाश मिलेगी और उनकी जो डिमांड है, जो उनकी आशा है, जो उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। इसके अलावा और भी कोई विधियां हैं, चक्र के ऊपर जो सृष्टि का चक्र है, ग्लोब जो ग्लोब है उसके ऊपर खड़े होकर के संसार की आत्माओं को सकाव देना। तो सृष्टि का जो चक्र है वो घूम रहा है, लेकिन हम उस चक्र पर स्थिर हैं। तो हमारे से जो निकलने वाली किरणें हैं वो संसार को जा रही हैं, और संसार की आत्माएं उन किरणों को, उन सकास को प्राप्त करती जा रही हैं। और एक दूसरी विधि है कि जैसे यहाँ पर कॉमेंट्री के माध्यम से संसार की आत्माओं को सकास देने की सेवा की थी, तो वो भी एक बहुत श्रेष्ठ विधि है, और वो विधि बहुत रमणीक भी है और लंबा समय तक हम उसमें टिक सकते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कॉमेंट्री के माध्यम से भी हम संसार की आत्माओं को सकास दे सकते हैं। ये भी एक बहुत सुंदर विधि है। संसार में बहुत वैरायटी है, अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, अनेक प्रकार के ग्रुप्स हैं। कोई युवा है तो कोई वृद्ध है, कोई डॉक्टर है तो कोई पेशेंट है, कोई इंजीनियर है तो कोई कुछ है तो कोई कुछ है। तो उस एक एक ग्रुप को इमर्ज करके हम उनको सकास दें, इससे हमारा जो सकास देने का टाइम है वो भी बढ़ेगा, और उससे प्राप्तियां, हमारे खुद को प्राप्तियां भी होंगे और संसार की आत्माओं को हम सकास दे सकेंगे, और सकास देने की रुचि पैदा भी होगी। तो कमेंट्री को लिखते लिखते भी सकास दे सकते हैं। तो कमेंट्री के माध्यम से संसार की आत्माओं को सकास देना, ये भी एक बहुत सुंदर विधि है। इसके अलावा और भी कई विधियां हैं, जैसे कि बाबा भी करते हैं कि संसार की आत्माओं को इमर्ज करना और उनमें बल भरना, उनसे बातें करना, उनको सकास देना, उनमें शक्ति भरना, दृष्टि से सकास देना, दृष्टि से हाथों से वरदान देना। तो ये भी एक सकास देने की विधि है कि संसार की आत्माओं को हम इमर्ज करें और उन आत्माओं को हम अपने वरद हस्तों से, दृष्टि से उनको सकास दें, शक्ति भरें उनमें। और दूसरी विधि ये है संसार की आत्माओं के पास हम जा करके अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा उनके पास जा करके उनको उनमें बल भरें, उनको किरणें दें। क्योंकि वर्तमान समय दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत समस्याएं हैं, और वर्तमान समय तो विशेष भारत में कौन सा प्रकोप चल रहा है? बाढ़ का प्रकोप। तो इस बाढ़ के प्रकोप के समय संसार में, विशेषकर भारत में, आत्माएं बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। तो जो आत्माएं परेशान हैं, दुखी हैं, उन आत्माओं को सकास देने की सेवा अवश्य करें, क्योंकि वो चाह रहे हैं, उनकी डिमांड है कि कोई आकर के हमको, हमारी हेल्प करे, हमारे मनोबल को बढ़ाए। तो उन आत्माओं को शांति की, शक्ति की, विशेष मदद की सकास अवश्य देनी है। हाँ, उन आत्माओं को उमंग उत्साह उनमें, उनके जीवन में बढ़े। जो आत्मा निराश हैं, उदास हैं, उन आत्माओं को उमंग उत्साह के पंख देने की सकास देनी है। हिम्मत की टांग, जिनमें हिम्मत नहीं कुछ करने की, कुछ आगे बढ़ने की, उन आत्माओं को हिम्मत की टांग दें, जिससे वो आत्माएं कुछ चल सकें, जीवन में कुछ कर सकें। तो ये सकास देने की कुछ विधियां थी। और दूसरी बात है, जो हमें इन विधियों को हर दिन अप्लाई करना है, सुबह शाम योग के समय और कर्म के साथ साथ भी इन विधियों को अप्लाई करना है। तो जब हम इन विधियों को बार बार अप्लाई करेंगे, बार बार इनको अमल में लाएंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, तो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में वो स्वाभाविक होता रहेगा। तो बाबा ने कहा कि जो अंत समय में जो बाकी सेवाएं बंद हो जाएंगी, उस समय आपको ये सेवा करनी पड़ेगी। तो ये सेवा करने के लिए हमें, उस समय हम ये सेवा कर सकें, उस सेवा को हम सफलतापूर्वक कर सकें, उसके लिए हमें अभी से उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जब हम ये सेवा करेंगे तो इससे बहुत सारे फायदे होंगे। क्या क्या फायदे होंगे? सबसे पहली बात है कि जिस चीज की हम सकास दे रहे हैं, कोई भी गुण है, कोई भी शक्ति है, हो सकता है हमारे पास उसका वर्तमान समय कमी है, लेकिन कम है, परसेंटेज कम है, उसकी वृद्धि होगी। हम शांति की सकास देते हैं, लेकिन हम खुद ही जीवन में कभी कभी शांति का अभाव अनुभव करते हैं। तो लेकिन जब हम ये कंटिन्यू अन्य आत्माओं को शांति की सकास देने का ये कार्य करेंगे, तो हमारी वो शांति की जो परसेंटेज है वो कंटिन्यू बढ़ती रहेगी। तो जो भी गुण हैं, जो भी शक्तियां हैं, उनकी यदि हम सकास देते हैं, तो उसकी परसेंटेज हमारे पास कंटिन्यू बढ़ती रहेगी। बाबा ने भी कोई मुरली में कहा है और भारतीय संस्कृति में भी इसकी मान्यता है कि आपके पास जिस चीज की कमी है वो क्या करो, उसको दान दो, दूसरों को दो, तो उससे वो आपका बढ़ेगा। बाबा ने भी, अव्यक्त बाबा ने भी ये बात कही कि जिस चीज की आप अपने में कमी महसूस करते हो उस चीज का दूसरों को दान दो। तो हम जब भी कोई शक्ति कोई गुण का दान देते हैं तो उससे हमारे में वृद्धि होती है, बढ़ती है। तो ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा है कि हम बाप के आज्ञाकारी बनते हैं। भगवान ने हम सभी को आदेश दिया है कि संसार की आत्माओं को सकाश दो, कि संसार में जो भी आत्मा है वो सब हमारे अपने ही भाई बहन हैं, सब भगवान के बच्चे हैं। तो बाबा चाहते हैं कि मेरे सभी बच्चे सुखी और शांत बन जाएं। उसके लिए बाबा ने हम सभी को निमित्त बनाया हुआ है। तो हमारा फर्ज बनता है कि बाबा ने हमें जो आज्ञा दी है, श्रीमत दी है, जो आदेश दिया है, उसको हम फॉलो करें, संसार की आत्माओं को सकाश दें। तो ऐसे हम बाप के आज्ञाकारी सपूत बच्चे बन जाएंगे। और तीसरा फायदा है, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। वर्तमान समय कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम व्यर्थ में आ जाते हैं, क्योंकि आधा कल्प का वो संस्कार बना हुआ है। तो यदि हम व्यर्थ से मुक्त होना चाहते हैं तो हम संसार की आत्माओं को सकाश दें। तो जितना समय हम सकाश देते हैं उतना समय तो हम व्यर्थ से मुक्त रहते ही हैं, स्वाभाविक है। उस समय हमारे मन में कोई भी व्यर्थ नहीं आता है किसी भी प्रकार का। तो तीसरा फायदा है कि हम व्यर्थ से मुक्त रहते हैं। चौथा फायदा है कि हम साक्षी हो जाते हैं। जिस समय हम सकाश देते हैं उस समय हमारी स्थिति कैसी होती है? साक्षी होती है। इस संसार से हम पूरी तरह से डिटैच रहते हैं, ऊपर रहते हैं। संसार का कोई भी लेपछेप हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। तो चौथा फायदा है कि इससे हम डिटैच साक्षी हो जाते हैं। और सकाश देने से एक फायदा यह है कि वैसे हम तो मेहनत, समय और खर्चा, इससे ये बचत होती है, इसलिए हमको सकाश देने की ये सेवा करनी है। तो ये एक साथ तीन फायदे होंगे, खर्चा भी बचेगा, समय बचेगा और मेहनत कम लगेगी। तो एक ये फायदा होगा, और एक ये फायदा होगा कि हम सकाश देने की सेवा कर रहे हैं और कंटिन्यू हम वो सेवा जारी रख रहे हैं, तो उससे हमारी वो नेचर बन जाएगी। और बाबा कहते हैं कि आप बच्चे संसार के लिए दाता, विधाता, बरदाता हो। तो हम सकाश देते देते क्या बन जाएंगे? मास्टर बरदाता बन जाएंगे। संसार की आत्माओं को हमारे से वरदान मिलते रहेंगे। हम चल फिर रहे बिना कुछ किए, संसार की आत्माओं को हमारे से स्वाभाविक ही वरदान मिलते रहेंगे। लेकिन कब? जब हम सकाश देने में एक्सपर्ट बन जाएंगे। इसके अलावा और संसार की आत्माओं से दुआएं मिलेंगी। जब हम संसार की आत्माओं को सकाश देते हैं और उन आत्माओं तक हमारी सकाश पहुंचती है तो उन आत्माओं से दुआएं निकलती हैं, शुक्रिया निकलता है, तो और वो दुआएं हमारे पास रिटर्न होकर के पहुंचती हैं। तो उससे क्या होगा कि हम स्वयं हल्केपन का अनुभव करेंगे। अगला फायदा है कि श्रीमत का पालन करने के हमें मार्क्स मिलेंगे, जो हमारे फाइनल पेपर में हमारे काम आएंगे। दातापन का गुण बढ़ेगा। और यदि हम स्वयं सकाश देते हैं तो हम दूसरों को भी सिखा सकेंगे कि हम सकाश देते हैं, आप भी सकाश दो, और हम जिस जिस विधि को अपनाते हैं आप भी उस विधि को उस रूप से अनुभव उसको अप्लाई करो, तो आप भी उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो दूसरी आत्माओं के लिए भी हम एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं कि हम दूरंदेशी विशाल बुद्धि बन जाएंगे। वर्तमान समय सभी की बुद्धि कैसी है? संकुचित है, लिमिट में है, बस थोड़े में उलझे हुए हैं, अटके हुए हैं, स्वयं में या स्वयं के परिवार में या कोई की एक अपने विशेष समाज में, धर्म में। लेकिन जब हम सकाश देते हैं तो हमारी बुद्धि विशाल दूरंदेशी बन जाती है। और इससे एक फायदा ये होगा कि संसार कि जो आत्माएं उन संसार की आत्माओं के प्रति हमारी शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं बढ़ जाएंगी, संसार की आत्माएं हमको अपने लगने लगेंगी। संसार में अनेक धर्म हैं, अनेक भाषाएं हैं, वैरायटी आत्माएं, लेकिन सर्व आत्माओं के प्रति हमारी भावनाएं कौन सी हो जाएंगे कि सभी आत्माएं अपने अपने परिवार के मेंबर हैं। संसार की आत्माओं के प्रति अपनेपन का भाव बढ़ जाएगा। दुनिया में एक संसार में कहावत है, वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब क्या है? वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? कि सारा संसार, सारा विश्व हमारा अपना परिवार है। तो एक परिवार का जो भावना है, जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो इससे बढ़ेगी कि सारे संसार की आत्माएं हमारे अपने परिवार के मेंबर्स हैं। और एक अगला फायदा है कि सकाश देने से हम भेदभाव से ऊपर चले जाते हैं। वैसे भी आप सभी अनुभव करते होंगे कि जिस समय संसार की आत्माओं को आप साक्षियों के सकाश दे रहे हैं, उस समय किसी के प्रति कोई भेदभाव इमर्ज होता है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। किसी के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं आता है, अर्थात हम भेदभाव से ऊपर उठ जाते हैं, हद से परे बेहद में चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। और अगला फायदा है कि हम जिस चीज के सकाश दे रहे हैं उस चीज में हम एक्सपर्ट बन जाते हैं और अथॉरिटी बन जाते हैं। यदि हम शांति के सकाश दे रहे हैं तो ये सकाश देते देते एक समय आएगा जो हम उस चीज के अथॉरिटी बन जाएंगे, हम शांति के एक कुंड बन जाएंगे, शांति के चुंबक बन जाएंगे। लेकिन लंबे समय तक सकाश देते रहेंगे तो। और एक इससे दूसरा फायदा यह है कि इससे बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज होती है स्वयं के अंदर, संसार के आत्माओं के अंदर भी, विशेषकर पहले स्वयं के अंदर। जिस समय हम बेहद में रहकर संसार की आत्माओं को सकाश दे रहे होते हैं, उस समय हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज रहती है, संसार में कहीं भी हमारा लगाव नहीं रहता है। और बाबा ने एक विशेष बात कही है कि जैसे साकार बाबा के समय में, यज्ञ की स्थापना के समय में साक्षात्कार का पाठ चला था, लेकिन उस समय एक साकार बाबा के सकाश का परिणाम था, लेकिन इस यज्ञ के अंतिम समय में या सृष्टि के अंतिम समय में जो संसार में सकाश, जो साक्षात्कार की धूम मचेगी संसार में, हर जगह साक्षात्कार का जो पाठ चलेगा, तो बाबा ने कहा कि उसका आधार भी ये हमारी मनसा सेवा होगी, ये सकाश की सेवा होगी। तो यदि जिसको इस सेवा में हिस्सा लेना है, इसका चांस लेना है, क्योंकि इसमें सभी आत्माएं भागीदार नहीं बन सकेंगी। जिन आत्माओं ने लंबे समय तक इसका अभ्यास किया होगा, इसकी प्रैक्टिस की होगी, ये सेवा की होगी, अंत समय में वो आत्माएं इस सेवा के निमित्त बन सकेंगी। तो अंत में जिसको अपना साक्षात्कार कराना है संसार की आत्माओं को, तो अभी से हमें सकाश देने की सेवा करती रहनी है। तो ये थी सकाश देने से फायदे। अगली तीसरी पॉइंट है सकाश हमारी, जिन आत्माओं को हमने सकाश दी उन तक हमारी सकाश पहुंची या नहीं पहुंची, उसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ क्या होगा? तो सबसे पहले बात है कि हमें उसके कुछ महसूसता होगी, तो पहले महसूसता होगी कि हमें संतुष्टता का अनुभव होगा। जिन आत्माओं के पास हमारी सकाश पहुंची, उन आत्माओं को खुशी मिली, उन आत्माओं को सुख मिला, चैन मिला, उनको सहयोग मिला, तो उन आत्माओं से जो दुआएं निकलेंगी वो दुआएं हमारे पास संतुष्टता के रूप में पहुंचेंगी। तो संतुष्टता का अनुभव होगा, साथ साथ हल्केपन का अनुभव होगा, हम स्वयं अपने आप को हल्कापन अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। और दूसरी बात है कि जैसे बाबा ने भी कहा हुआ है कि जब भी कोई नई सेवा शुरू करते हैं कोई भी नए स्थान पर, तो बाबा का कहना है कि उस स्थान की सेवा करने से पहले आपको वहां के लिए सकाश देनी है, मनसा सेवा करनी है, वहां का वायुमंडल तैयार करना है। तो उससे क्या होता है, सेवा अच्छी होती है, सेवा आसान हो जाती है, सेवा में सफलता मिलती है। तो सफलता मिलना ये हमारी सकाश का परिणाम है, और सभी ब्राह्मण आत्माएं इसको, इस विधि को प्रयोग भी करती है कि जब भी कोई नए स्थान पर सेवाएं करते हैं तो पहले वहां के लिए सामूहिक रूप में सकास देते हैं, और सकास देते हैं तो इसका रिजल्ट ये निकलती है कि वहां सेवाएं सहज हो जाती हैं, वहां बहुत सारी आत्माएं निकलती हैं। और विशेषकर एक तो ये प्रूफ है कि उसके लिए हम पहले से निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने सकास दी अर्थात वो सेवा सफल होगी ही होगी। तो सकास देने से और भी बहुत सारे प्रूफ मिलते हैं, जैसे कि किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम्स है, कोई बीमारी है, तो यदि हम उस आत्मा को सकास देते हैं तो उस आत्मा को हमारे से सहयोग मिलता है और हमें बाद में समाचार मिलता है कि उसकी जो समस्या थी वो काफी हद तक सॉल्व हो गई। तो ये भी एक प्रूफ है कि हमने सकास दी और उस आत्मा को उसके पास तक पहुंची और उससे वो उसकी समस्या हल हुई। तो ये भी एक प्रूफ है कि सकास हमारी काम कर रही है। नहीं, दोनों की पहुंची, या ग्रुप में हम सकास देते तो सबके सहयोग से वो समस्या का हल हुआ, तो ये प्रूफ हुआ कि सकास हमारी ये काम कर रही है। और विशेषकर संबंधों में जो खिटपिट होती है, कंफ्लिक्ट होती है, टकराव मनमुटाव होता है, जब हम उस बात को वार्तालाप से हल नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए एकमात्र साधन है सकास, मनसा सेवा। तो जब हम बार बार उस आत्मा को सकास देते हैं, उससे मन से बात करते हैं, तो एक समय आता है कि वो कन्फ्लिक्ट जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ये भी एक प्रूफ है कि हमारी सकास काम कर रही है, और ये हर एक ब्राह्मण आत्मा इसको यूज करती है, क्योंकि हर एक के जीवन में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं संबंधों में जो वार्तालाप के माध्यम से वो हल नहीं होती है। फिर एकमात्र साधन यही रहता है कि उसको सकास दो, उसको शांत करो और अपने संबंधों को सुधारो, ठीक बनाओ, मधुर बनाओ। तो ये भी एक प्रूफ है कि हमारी सकास काम करती है। जैसे यज्ञ के इतिहास में भी कई ऐसे दृष्टांत आए, जैसे कि दिल्ली की सेवाएं, दिल्ली में जब बड़ा प्रोग्राम होने वाला था उस समय वहां से जो सेवाएं हो रही थी और वो सेवाएं लगभग समाप्ति की ओर, एक उसकी जो तैयारी थी वो कंप्लीट होने की तरफ बढ़ रही थी, उस समय गवर्नमेंट से मैसेज आया कि हमें ये ग्राउंड चाहिए। तो उस समय बाबा का मैसेज भी था और दादी ने सभी को कहा था कि अभी आपको योग की भट्टी करनी, अर्थात उन आत्माओं को सकास देनी है जिनकी ये डिमांड है कि ये ग्राउंड खाली करें। तो उस समय सभी ने सामूहिक रूप में उनको सकास दी योग भट्टी की, मनसा सेवा की। तो उसका परिणाम क्या निकला कि उन्होंने बाद में परमिशन दी कि आप अपना प्रोग्राम कर सकते हो। तो ये भी एक प्रूफ है कि हमारी सकास काम कर रही है। तो इसी प्रकार से और भी कई ऐसी बातें हैं, जैसे स्वयं की बीमारियां होती हैं, स्वयं के जीवन में कई ऐसे अपने शारीरिक व्याधि होती हैं जो ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उसका कोई हल नहीं निकलता है। तो फिर हम बाद में क्या करते हैं, अपने आप को सकास ही देते हैं और सकास के माध्यम से उससे बाद में सफलता हासिल करते हैं। तो ये भी प्रूफ है कि जो बीमारियां जीवन में आती हैं, हमारे शारीरिक बीमारी है या मानसिक बीमारी है, उसके लिए हम सकास का प्रयोग करते हैं और उससे हम अपने आप को मुक्ति भी पाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रूफ हैं, तो उनके बारे में आप स्वयं सोचेंगे, उनको नोट करेंगे और फिर बाद में उनको ध्यान में रखते हुए जो हमारे सकास देने की जो प्रोसेस है, विधि है, जो हमारा पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ को हमें और भी तीव्र बनाना है, जिससे हम भविष्य में अपने आप को इसमें एक्सपर्ट बना सकें और भविष्य में हम वैरायटी प्रकार की सेवा कर सकें और अपने आप को हम ऊंचा उठा सकें, संपन्न बना सकें, माला माल बना सकें, संपन्न और संपूर्ण बन सकें। ओम शांति।